अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत और रूस के रिश्तों में गर्माहट बरकरार है। रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया है। इस दंडात्मक शुल्क और चेतावनी के बावजूद भारत रूस के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती देने का प्रयास कर रहा है। गुरुवार को विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की। इसके पहले जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ बैठक की थी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए जयशंकर ने भारत रूस मित्रता की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच संबंध दुनिया के सबसे मजबूत रिश्तों में से एक रहे हैं। रूस के साथ भारत के व्यापारिक रिश्तों को लेकर भी जयशंकर ने सकारात्मक बातें कही हैं और अब चर्चा भारत के घरेलू मामलों की। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के साझा उम्मीदवार बने सुदर्शन रेड्डी ने गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में सुदर्शन रेड्डी का सामना एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे सुदर्शन रेड्डी ने सभी दलों से समर्थन मांगा है। उन्होंने उपराष्ट्रपति पद को गैर राजनीतिक बताते हुए कहा,
उपराष्ट्रपति की जो ऑफिस है वो पॉलिटिकल ऑफिस नहीं है। काफी लोगों को गलत फहमी है। इट्स ए हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस विच इज रिक्वायर्ड टू बी इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनमस इम्पार्शियल विच आर द क्वालिटीज ऑफ ए जज एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई हैव एक्सेप्टेड।
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी सांसदों से कहा है कि वह दलीय हितों से ऊपर उठकर मतदान करें।
जस्टिस साहब को जिताने के लिए पूरी भरसक प्रयत्न करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चुनाव, चूंकि ये सीक्रेट बैलेट होता है, इसमें विप नहीं चलता है, तो मैं सभी पार्टियों से बोलूंगा कि जस्टिस रेड्डी का एक इम्प्रेसिव उनका करियर रहा है एज जज। जब उन्होंने देश के हक में, न्याय के हक में बहुत बड़े बड़े निडरता के साथ फैसले दिए हैं, तो उपराष्ट्रपति की पोस्ट के ऊपर इनके जैसा व्यक्ति आएगा तो उस कुर्सी का और मान सम्मान बढ़ेगा। तो मैं तो सभी को बोलूँगा कि ये कोई पक्ष या विपक्ष के कैंडिडेट नहीं है, ये सबके कैंडिडेट हैं, ये देश के कैंडिडेट हैं।
संसद का मानसून सत्र गुरुवार को समाप्त हो गया। इस पूरे सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार चलती रही। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने हंगामे के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया है।
देश के लिए और सरकार के दृष्टि से बहुत ही फ्रूटफुल सेशन रहा है। ये मॉनसून सत्र बहुत उपयोगी सत्र रहा है, लेकिन अपोजिशन एमपीस के लिए बहुत नुकसान रहा है, क्योंकि अपोजिशन एमपीस, विशेष करके जो नए एमपीस है, उसको बोलने का मौका नहीं मिला। पार्लियामेंट सेशन में अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, देश के लिए, समाज के लिए बात रखने का सब एमपी का मन होता है, तो इस बार अपोजिशन पार्टी के एमपीज को बोलने का मौका नहीं मिला। उसका जिम्मेदार है अपोजिशन पार्टी के खुद नेता लोग।
हंगामे के बीच ही सरकार ने 12 विधेयक लोकसभा से पारित करवा लिया, जबकि राज्यसभा में 14 विधेयक पारित हो पाए। विपक्ष ने संसद और संसद के बाहर काफी आपत्तियां दर्ज करवाई हैं। सरकार ने 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। इसमें यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्र एवं राज्य में मंत्री नहीं रह पाएगा। किरण रिजिजू इस बारे में कहते हैं,
आजादी के बाद पहली बार ऐसा सरकार ने कदम उठाया जिसमें प्रधानमंत्री खुद को भी इस कैटेगरी में रखा कि अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं, 30 दिन तक बेल नहीं मिलता है, तो ऑटोमेटिक उसको इस्तीफा दिया माना जाएगा।
इस बिल को संसद में काफी विरोध का सामना करना पड़ा। इसके बाद इसे जेपीसी में भेज दिया गया। इस बिल को लेकर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने सरकार पर कटाक्ष किया है।
क्रोनोलॉजी समझे, देश के लोगों को क्रोनोलॉजी समझना चाहिए। पहले एमएलए चुराते थे, फिर वोट चोरी किया, उसके बाद सीएम चुराने का प्रबंध इन्होंने कर लिया है।
इन दिनों भाजपा और कांग्रेस पार्टी लगभग हर मुद्दे पर एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। मुगलों और अंग्रेजों के साथ ही कांग्रेस पार्टी को बदहाल अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार बताते हुए योगी आदित्यनाथ कहते हैं,
17वीं-18वीं सदी में यह देश दुनिया की नंबर एक की अर्थव्यवस्था थी। याद करिए, पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था।
बिहार में जारी विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर भी भाजपा और कांग्रेस पार्टी आमने सामने हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार में इन दिनों वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। आज यात्रा का छठवां दिन है और वे भागलपुर में पहुंच रहे हैं। इस दौरान एक लंबे रोड शो का कार्यक्रम है। गुरुवार को मुंगेर में भीड़ को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने वोट चोरी के साथ बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया।
हजारों युवाओं से मिला हूं और सारे के सारे कह रहे हैं, दो चीजें कह रहे हैं। पहला, हमें रोजगार चाहिए, हमें कर्नाटक में नहीं, तेलंगाना में नहीं, बिहार में ही रोजगार चाहिए।
आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी गया जी और बेगूसराय जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। आपको बता दें कि इस साल के अंत तक बिहार के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी के चलते राजनीतिक दलों की सक्रियता राज्य में काफी बढ़ गई है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।